surgió me.
ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए, त्योहारों में स्थानीय उत्पादों की खरीद से अर्थव्यवस्था और आत्मनिर्भरता को मिलती गति पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं आर्थिक विश्लेषक शिशिर सिन्हा, कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं सुबोध मिश्रा।
नमस्कार श्रोताओं, भारत में ये मौसम है उत्सवों और त्योहारों का। यह खुशियों के साथ साथ हमारे बाजार और रोजगार को गति देने का मौसम भी है। तो आइए आज जानते हैं कि कैसे लोकल को अपनाकर हम अपनी अर्थव्यवस्था को नई ऊर्जा दे सकते हैं। इसे विस्तार से समझाने के लिए हमारे साथ हैं वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार शिशिर सिन्हा। शिशिर जी, आकाशवाणी में आपका स्वागत है।
बहुत बहुत धन्यवाद और तमाम श्रोताओं को दीपोत्सव की शुभकामनाएं।
चर्चा शुरू करने से पहले आइए सुनते हैं कि प्रधानमंत्री ने इस पर क्या कहा है।
आने वाले दिनों में बहुत सारे त्योहारों की रौनक होगी। उन त्योहारों में आपको स्वदेशी की बात कभी भी भूलनी नहीं है। उपहार वही जो भारत में बना हो, पहनावा वही जो भारत में बुना हो, सजावट वही जो भारत में बने सामान से हो, रोशनी वही जो भारत में बनी झालरों से हो, और भी ऐसा बहुत कुछ। जीवन की हर जरूरत में सब कुछ स्वदेशी हो। गर्व से कहो ये स्वदेशी है, गर्व से कहो ये स्वदेशी है, गर्व से कहो ये स्वदेशी है। इस भाव को लेकर हमें आगे चलना है। एक ही मंत्र वोकल फॉर लोकल, एक ही रास्ता आत्मनिर्भर भारत, एक ही लक्ष्य विकसित भारत।
शिशिर जी, वोकल फॉर लोकल का असली मकसद क्या है और ये रोजगार और आय बढ़ाने में कैसे मदद करता है?
पारंपरिक अगर व्यवस्था को देखिए तो हमारे देश में जो पूरे औद्योगिक संरचना है उसमें एमएसएमई और टाइनी यानी कि अत्यंत सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों की बड़ी भूमिका रही है। और अगर आप देखें तो जीडीपी के अगर शेयर की हम लोग बात करें तो 40% से भी ज्यादा जो शेयर है वो इन क्षेत्रों से आता है। निर्यात में भी इनकी बड़ी भूमिका है, रोजगार देने के मामले में भी ये काफी आगे हैं। तो अभी के समय में जो बात बार बार कही जा रही है कि हमें लोकल के लिए वोकल होना यानी कि अपनी आवाज बुलंद करनी है, वो इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि त्योहारों के मौसम में जिस तरीके की खरीदारी होती है, और खरीदारी में दोनों तरह की खरीदारी होती है, एक सामान्य जिसे कहा जाए कि सामान्य कीमत वाली भी और एक जिसको हम लोग कहते हैं
हाई वैल्यू
वाली भी। तो दोनों ही मामलों में भारत में उत्पादन होने लगा है। अगर आप, मैं छोटा सा उदाहरण दूं, मोबाइल फोन, पहले हमारे यहाँ मोबाइल फोन जो हाई एंड होते थे वो अमूमन आयात होते थे, अब हम दुनिया को निर्यात कर रहे हैं। तो उनको अगर हम यहाँ के बने हुए, यहाँ पे असेंबल किए हुए मोबाइल फोन को खरीदते हैं वैल्यू एडेड वाले, तो उसका फायदा हमें मिलने वाला है। दूसरी, अगर सामान्य कीमत को देखें तो बहुत सारे जो हमारे छोटे कारोबारी हैं उनके लिए ये अपने व्यवसाय को लाने का एक मौका। ये जो 3 महीने आप देखते हैं नवरात्रि से शुरू होकर के संक्रांति तक जो चलता है, एक तरीके से कह लीजिए, वहां पर खरीदारी अगर इन स्थानीय विक्रेताओं से, स्थानीय उद्यमियों से किया जाए तो उसका फायदा पहला तो यह है कि स्थानीय उद्यमिता को बढ़ावा मिलेगा, दूसरा रोजगार के मौके, चाहे वो प्रत्यक्ष हो, अप्रत्यक्ष हो, थोड़े समय के लिए हो, लंबे समय के लिए हो, वो सभी के लिए होगा। आप एक बात और देखिए कि इस समय में गिग वर्कर्स की काफी चर्चा होने लगी है जो पहले नहीं होती थी। गिग वर्कर क्या है? जो हमारे ई कॉमर्स हैं उनके जो सामान है वो हमारे घरों तक पहुंचाते हैं। जब हम मांग करते हैं तभी तो उन वर्कर्स की मांग बढ़ेगी। तो मुझे लगता है कि जब लोकल के लिए हम लोग वोकल होने की बात करते हैं तो इसका सबसे बड़ा फायदा जो हमारे अत्यंत सूक्ष्म और जो छोटे उद्योग हैं उनको मिलने वाला होता है।
जी, आपने जैसा कहा अभी वोकल फॉर लोकल तो है ही, अब लोकल से ग्लोबल भी हम हो रहे हैं।
बिल्कुल, आज के दिन में देखिए घरेलू बाजार महत्वपूर्ण है और हमारे बाजार की एक बड़ी खासियत यह है कि बहुत विविधताएं हैं। जैसे कहते हैं ना कि हर कुछ दूरी पर जो है आपकी भाषा बदल जाती है, संस्कृति में बदलाव देखने को मिलता है, खान पान में बदलाव देखने को मिलता है और बाजार में भी बदलाव देखने को मिलता है। तो ये बाजार तो ठीक है, लेकिन क्या इसी बाजार के बदौलत हम चल सकते हैं? नहीं। अगर आपको अपने जीडीपी के वैल्यू को बढ़ाना है, अगर आप विश्व में बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में और ऊपर चढ़ना चाहते हैं, तो आपके लिए जरूरी है कि लोकल से हम ग्लोबल की ओर बढ़ें। और यही वो नारा है जिस पर अमल किया जा रहा है, उसके लिए तमाम नीतियां बनाई जा रही हैं, योजनाओं पर अमल किया जा रहा है।
जी, आपने अभी गिग वर्कर्स की बात की थी, अब इससे जुड़ी हुई बात पूछता हूं कि क्या डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं जो वो लोकल उद्यमों के लिए गेम चेंजर बन सकते हैं?
बिल्कुल, देखिए एक छोटे उद्यमियों के लिए एक बड़ी परेशानी यह है कि ग्राहकों तक पहुंचना उनके लिए आसान नहीं है। आप एक बड़ा शोरूम नहीं बना सकते हैं, आप एक बड़ी खिड़की नहीं खोल सकते हैं, उसके लिए आपको संसाधन चाहिए। वहां पर आपके लिए एक बेहतर विकल्प होता है कि जब आप ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर रजिस्ट्रेशन कराते हैं और फिर उसके जरिए सामान बेचते हैं, किसी भी आप ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे देखें तो बहुत सारे लोकल एंटरप्रेन्योर्स जो हैं वो रजिस्ट्रेशन कराए, उन्होंने अपने सामान बेचे हैं। इसका दो फायदा होता है, एक उनका कारोबार तो बढ़ता है, दूसरी तरफ अर्थव्यवस्था का औपचारिकरण बढ़ता है और सरकार को भी ये पता चल सकता है कि कहां पर हमें जरूरत है। एक आपको उदाहरण देना चाहूंगा कि अभी श्रम मंत्रालय ने एक बड़े प्लेटफॉर्म के साथ गिग वर्कर के लिए समझौता किया है ताकि काम के ज्यादा मौके बन सके। काम के मौके तभी बनेंगे ना जब सामान और सेवाएं उपलब्ध होंगी जो कि स्थानीय उद्यमियों की ओर से बड़ी मात्रा में बड़ी तादाद में उपलब्ध कराए जा सकते हैं।
त्योहारों के इस मौसम में लोकल दुकानदार और कारीगर कैसे अपनी कमाई बढ़ा सकते हैं?
देखिए, पहला तो जो पारंपरिक व्यवस्था है जिसमें हम कहते हैं कि आप एक विशेष तौर पर सजावट कर लें, दुकान सजा लें, वो तो चलता ही रहता है, लेकिन अभी का दौर है जहां पर ज्यादा से ज्यादा लोग जो है वो ई कॉमर्स पर डिपेंडेंट है, वहां पर उन उद्यमियों के लिए उन प्लेटफॉर्म का यूज करना संभव है। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि बहुत जो सूक्ष्म है, बहुत छोटे वाले जो उद्यमी है उनके लिए ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे आना आसान नहीं है, तो उनके लिए तो जो दुकान सजने की बात है, किसी भी शहर में आप चले जाएं, बड़े शहर में, महानगरों में या फिर कस्बों में या छोटे शहरों में, आप देखिए कि हर इलाके में दुकानें सजी हुई हैं जहां पर तरह तरह के सामान उपलब्ध हैं। तो दोनों ही व्यवस्थाएं पारंपरिक भी है और आपके लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी है।
और उपभोक्ताओं की सोच को कैसे बदलें कि मेड इन इंडिया या लोकल चीज उनकी पहली पसंद बने?
जैसा मैंने आपको मोबाइल फोन का उदाहरण दिया, मोबाइल फोन के मामले में जो बातें होती थी कि हमको एक खास तरीके का मोबाइल फोन लेना है जो कि कहीं और असेंबल है, कहीं और बना हुआ है। इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज में हमने ज्यादातर अभी तक तो जो निर्भरता थी वो दूसरे देशों के ऊपर होती थी, अब वो कंपनियां जो कि दूसरे देशों में सामान तैयार करती थी उनकी फैक्ट्री हमारे यहाँ आ गई है, तो वो सामान हमारे यहाँ उपलब्ध हो गया है। अब जहां तक सवाल की उपभोक्ताओं की मानस की बात है, देखिए उपभोक्ता एक ब्रांड खरीदता है, उस ब्रांड की उपलब्धता किस तरीके से हो जाए और उस ब्रांड की कीमतों में हम किस तरीके से बदलाव कर सके। अभी देखिए जीएसटी का रेट रिडक्शन हुआ है, वित्त मंत्री ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और उसमें उन्होंने 54 आइटम का जिक्र किया था कि 54 आइटम जिसकी निगरानी सीबीआईसी कर रहा है उसमें पाया गया कि सभी 54 में कुछ न कुछ दाम कम हुए हैं। जैसे मैं आपको एक उदाहरण दूं, एयर कंडीशनर है, हाँ एयर कंडीशनर आप कह सकते हैं कि हाई एंड प्रोडक्ट है, वहां पर भी दाम लगभग 10% कम हुए हैं। ज्यादातर जो सामान है जिसको हम लोग कहते हैं ना एफएमसीजी गुड, रोजमर्रा के सामान है, उसमें भी कमी आई है। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात होती है ब्रांड, और यदि वो ब्रांड भारत में बन रहे हैं ग्राहक के लिए कम कीमत पर उपलब्ध कराना संभव हो सकता है और जो कि जीएसटी रेट रिडक्शन के बाद हुआ है। उपभोक्ताओं की मानसिकता रातों रात नहीं बदलेगी, ये भी एक हकीकत है, लेकिन काफी बदलाव हमने देखा है खासतौर पर इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस के मामले में, और ये जीएसटी रेट रिडक्शन के बाद और जितने ज्यादा मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स मार्केट में आते जाएंगे, मार्केट में उसकी उपलब्धता बढ़ती जाएगी, तो उपभोक्ताओं की मानस जो है वो बदलाव देखने को हमें मिल सकता है।
और वोकल फॉर लोकल में युवाओं और स्टार्टअप्स की भूमिका की कितनी अहमियत है?
इसके पहले एक और मैं बात कहना चाहूंगा कि जो धारणा बनी हुई है ना कि हम विदेशों का सामान खरीदेंगे वो काफी अच्छा होता है, ये काफी बदलाव हमें देखने को मिल रहा है, खासतौर पर जो मिडिल क्लास जो कि बाजार का एक बड़ा उपभोक्ता है वो देखने को मिल रहा है। अब आपका जो प्रश्न है स्टार्टअप को लेकर के
जी, और
युवाओं का लेकर के, देखिए स्टार्टअप में पूरी की पूरी जो प्रक्रिया होती है वो तकनीक आधारित होती है। तकनीक आप किस तरीके से बेहतर कर सकते हैं, आप सोचिए ना कि आज से कुछ समय पहले हम लोग ये सोच भी नहीं सकते थे कि रेस्टोरेंट का खाना हमारे घर पे पहुंचेगा, हम ये मान के चलते थे कि हमें रेस्टोरेंट ही जाना और वहीं खाना खाना है, अब वो खाना आपके घर पे पहुंचने लगा है। तो तकनीक जिसके आधारित स्टार्टअप है, कोई भी स्टार्टअप वही कामयाब हो सकता है जो नवाचार की ओर बढ़ रहा हो। आज देखिए लगभग 1 लाख जो हमारे स्टार्टअप्स हैं उनमें से बहुसंख्यक जो है वो लोग हैं जिन्होंने तकनीक में नवाचार को अपनाया है। और युवाओं की जहां तक बात है, देखिए 65% आबादी हमारी जो है वो 35 वर्ष से कम उम्र की है, यानी कि उपभोक्ताओं का एक बड़ा वर्ग है, और युवाओं की जो प्राथमिकता और जो चीजों को पसंद करने की जो बातें होती है बहुत तेजी से बदलती है, उनके हिसाब से आप बाजार में किस तरीके से सामान में बदलाव ला सकते हैं। आप बाजार में यदि ये सोचने कि हमने सामान ला दिया, हमारा सामान अच्छा बिक रहा था, उस पे नहीं चलेगा, बिकेगा कि नहीं, इसके लिए आपको अपने सामान में बाजार के चलन के हिसाब से बदलाव करना पड़ेगा।
जी, सरकार और निजी क्षेत्र ये दोनों कैसे साथ मिलकर इसके प्रभाव को बढ़ा सकते हैं?
देखिए, यहाँ पर सबसे बड़ी बात होती है ना कि बाजार में अगर मांग लानी हो तो दो चीजें चाहिए, एक तो सामान आपके पास उपलब्ध हो और दूसरी तरफ जो है वित्तीय व्यवस्था आपके पास हो। सामान उपलब्ध कराने की बात हो तो आपने देखा होगा कि जब पीएलआई प्रोडक्टिविटी लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम्स लाया गया, उसका सबसे ज्यादा फायदा अगर किसी ने उठाया तो कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक गुड्स ने उठाया है। वो सरकार की एक नीति थी जिस नीति को निजी कंपनियों ने हाथों हाथ लिया और उसके जरिए उन्होंने अपनी उत्पादन क्षमता बढ़ाई। आप कई क्लस्टर देख सकते हैं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में जहां पर कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक गुड्स जो है वो काफी हैं। उसी तरीके से आप देखेंगे कि सेमीकंडक्टर जो कि कई उद्योगों के लिए कच्चा माल है, वहां पर भी पीएलआई का आया, उसको भी निजी क्षेत्र ने किया। अब देखिए कि देश में पहली सेमीकंडक्टर यूनिट स्टार्ट हुई, दूसरी ने भी स्टार्ट कर दिया अपना प्रोडक्शन। तो सेमीकंडक्टर को आप यूं समझ सकते हैं कि किसी भी कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स या ऑटोमोबाइल के मामले में वो एक बड़ी भूमिका निभाते हैं और वो आपके अपने देश में बनना शुरू हो गया। अभी हमारी विदेशों पर निर्भरता होती थी, तो सरकार की नीति को निजी कंपनियां या निजी क्षेत्र किस तरीके से अमल में लाती है उसका ये एक उदाहरण है। हमें इस बात को भी समझना चाहिए कि हमेशा हम ये समझे कि सरकार ही करेगी तभी हम कुछ कर सकते हैं, तो सरकार का काम व्यवसाय करना नहीं होता है, सरकार का काम व्यवसाय को प्रोत्साहित करना होता है और वहां पर निजी क्षेत्र उस प्रोत्साहन के मामले को किस तरीके से अपने लिए लेता है और उसका इस्तेमाल करता है वो महत्वपूर्ण है। पीएलआई ने वो एक उदाहरण सेटअप कर दिया है।
जी, क्या लोकल प्रोडक्ट्स की क्वालिटी और ब्रांडिंग पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है? क्या इससे सहायता मिल सकती है वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा देने में?
निश्चित तौर पे। देखिए, आज के दिन में कोई भी हम जैसे सामान बाजार में खरीदने जाते हैं या इवन ई कॉमर्स वेबसाइट से जो मंगवाते हैं, वहां पर हम इस बात को जरूर देखते हैं कि उसके बारे में लोगों की राय क्या है, बाजार में बिक क्या रहा है, और बाजार में जो सामान बिक रहा है उसमें एक बड़ी भूमिका एक तो क्वालिटी की होती है, एक ब्रांडिंग का होता है। ब्रांडिंग का मजबूत होना क्वालिटी उसके लिए सबसे पहली सीढ़ी है। अगर आपकी क्वालिटी खराब है तो आपका ब्रांड कभी भी नहीं बन सकता, भले ही आप बहुत बड़े औद्योगिक घराने से हों, और ऐसे हमारे पास कई उदाहरण हैं। तो मुझे लगता है कि जब प्रधानमंत्री का ये कॉल था कि आपको जीरो डिफेक्ट पे चलना है, यानी कि आपके प्रोडक्ट में खामियां ना हो, इससे आप दोनों बाजार को कैटर कर सकते हैं, जो विदेशी बाजार है जब आप सामान आप निर्यात कर रहे हैं, और घरेलू बाजार में उपभोक्ताओं के बीच में उन विदेशी बाजार में जहां पर चलन रहा है जिनका, उनके चलन को भी कम कर सकते हैं। तो क्वालिटी सबसे पहली सीढ़ी है, ब्रांडिंग उसके बाद आता है कि क्वालिटी अगर आपकी अच्छी होगी तो ब्रांडिंग को मजबूत करने में आपको बहुत मदद मिलेगी।
शिशिर जी, फिर से अर्थशास्त्र की कक्षा में लौटते हैं। लोकल खरीदना सिर्फ देशभक्ति नहीं बल्कि अर्थव्यवस्था में निवेश भी है।
बिल्कुल, देखिए अर्थशास्त्र का एक सिद्धांत है जिसको हम लोग कहते हैं, अगर हिंदी में मैं इस्तेमाल करूं, सूचक्र है, वर्चुअस साइकिल जिसको हम लोग कहते हैं, जिसका जिक्र वित्त मंत्री ने परसों भी अपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया है। इस सूचक्र की पहली जरूरत यह है कि बाजार में मांग है कि नहीं। आप स्थानीय सामान की मांग करेंगे तभी कोई स्थानीय उत्पादक सामान बनाएगा ना। अभी देखिए दीपावली का समय है, हम दीये खरीदते हैं, हम बहुत सारे लक्ष्मी गणेश जी की मूर्तियां और हनुमान जी की मूर्तियां लेते हैं, वो सब आप उन्हीं से लेंगे। जब मांग आप करेंगे तभी तो कोई बाजार में उपलब्ध कराएगा ना, जब मांग नहीं करेंगे तो बाजार में तो आएगा नहीं। तो पहली जो जरूरत अर्थशास्त्र के मामले में है, चूंकि आपने अर्थशास्त्र की कक्षा का जिक्र किया, चूंकि हम जो है वो अर्थशास्त्र के विद्यार्थी हैं, तो हम इतनी जानते हैं बात कि पहली चीज मांग है। मांग होगी तभी आपूर्ति होगी, और मांग कहां से है? उपभोक्ताओं से है। जो स्थानीय उत्पादों की मांग अगर उपभोक्ता करना शुरू करें तो स्थानीय स्तर पर निवेश आएगा, और पिछले कुछ दिनों के दरमियान हम लोगों ने इस चीज को नोटिस किया है कि जो निजी निवेश स्थानीय स्तर पर था उसमें बढ़ोतरी हुई है। एक और बात मैं आपको कहूंगा, बैंकों के नतीजे आए हैं अभी पिछले 3-4 दिनों में, सभी बैंकों ने इस बात पर कहा है कि कॉरपोरेट लोन में बढ़ोतरी हो रही है, वो डबल डिजिट में पहुंच गया है। कॉरपोरेट लोन का बढ़ना इस बात की ओर इशारा कर रहा है कि बाजार में जो मांग है, स्थानीय कंपनियां हैं, देसी कंपनियां जो हैं वो अपनी उत्पादन क्षमता को बढ़ा रही हैं। तो मुझे लगता है कि मांग का बढ़ना पूरे के पूरे अर्थव्यवस्था की जो साइकिल है, चक्र है, उसके लिए बहुत ही अनिवार्य होता है।
श्रोताओं, जैसा कि अभी शशिर जी ने विस्तार से समझाया, वोकल फॉर लोकल सिर्फ नारा नहीं बल्कि अपने भविष्य में निवेश है। शशिर जी, बहुत सार्थक जानकारियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
जी धन्यवाद।
अभी आप सुन रहे थे त्योहारों में स्थानीय उत्पादों की खरीद से अर्थव्यवस्था और आत्मनिर्भरता को मिलती गति पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे आर्थिक विश्लेषक शिशिर सिन्हा। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे सुबोध मिश्रा। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।
सुर्खियों में